ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
भक्त खाली केवल ध्यान करता रहेगा ऐसा नहीं, भक्त केवल पूजा ही करता रहेगा ऐसा भी नहीं, भक्त केवल प्रणाम ही करता रहेगा ऐसा नहीं। एक समय की बात है, हमारे नेपाल के कुछ भक्त लोग कहने लगे, महाराज भारत के सभी तीर्थों की यात्रा एक ही बार किया जाए तो तीर्थ यात्रा में सामूहिक रूप में निकले। तो हमने कहा ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है तो कर लेते हैं, चलो। तो एक बस रिजर्व कर ली और चल पड़े। 50 दिन की यात्रा थी वो, कितने दिन की? 50 दिन की यात्रा थी। तो रोज नई जगह जाओ, दर्शन करो, पूजा करो, नहा धो लो, फिर बस चढ़ो, फिर दूसरी जगह जाओ, धर्मशाला में रात को सो, खाओ पियो, फिर सुबह दर्शन करो, 12-1 बजे 2 बजे तक दर्शन करो, फिर उसके बाद बस चढ़ो, फिर दूसरी जगह जाओ। ये 50 दिन इस तरह घूमते रहना था। तो उस ग्रुप में एक भक्त थी, महिला थी, वह बस से उतरते ही नहा धो के पहले मंदिर दर्शन करना उसका काम था और कुछ नहीं, और प्रणाम करते करते मंदिरों में इधर प्रणाम करे, उधर प्रणाम करे, इधर प्रणाम करे, उधर प्रणाम करे। अरे बाबा, मूर्ति तो उसको देखना ही नहीं है, कहीं अबीर गुलाल या चंदन लगा हुआ कोई पत्थर भी होगा ना, वो तुरंत प्रणाम करने लग जाएगी। अब सब लोग खा पी के बस में चढ़ने लगे, वो तो आई नहीं, कहां आए बोले, वो मंदिर में ही प्रणाम कर रही होगी, फिर जाओ मंदिर में खोजो। तो बोले चलो भाई सब तैयार, अभी 2-3 मंदिर और बाकी है दर्शन करने के, बोलती है। उसका तो सारा समय खाली प्रणाम में ही जाता था। तो ऐसा नहीं भाई, कीर्तन भी करो भाई, नति भी करो, नुति भी करो, स्तुति भी करो, प्रार्थना भी करो, और यदि कहीं मंदिर नहीं मिले तो फिर क्या करें महाराज। तो वैदिक सनातन धर्म बहुत ही विशाल है, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म मार के मुसलमान बनाया तो है ही नहीं, इसलिए जो फ्रीडम यहां है, जो स्वतंत्रता इस धर्म में है, और इतने एकदम सरल है, व्यक्ति को केवल भक्त होने की जरूरत है, बाकी कुछ भी कर लो स्वतंत्र। वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण में लिखा है, तुम यात्रा में हो, भगवान की पूजा कैसे करोगे, फूल तो है नहीं। पुष्पाणि संतु तब देव ममेन्द्रियाणि, महाराज ये मेरे इंद्रियां हैं ना 10, ये 10 के 10 इंद्रियां आपके लिए फूल का काम करें, फूल। पुष्पाणि संतु तवदेव ममेन्द्रियाणि, स्कंद पुराण का सुलभ। तो एक पूजा हो गई पुष्पा, फिर धूप क्या होगा महाराज? धूपो गरुर बपुरिदम, ये जो मेरा शरीर है यही आपके लिए धूप का काम करे। 75, 80, 90 वर्ष तक ये शरीर को हम जो रख रहे हैं किस लिए? भगवान शिव की पूजा में धूप का काम लग जाए, बस। समझे कि नहीं? मशान घाट में जब आग लगाया जाएगा तो भगवान शिव मशान में ही रहते हैं ना, तो रहते हैं कि नहीं? बस जिस समय हमारा बेटा आग लगा देगा, बा धूप क्या कहना, भगवान शिव मक पड़े, क्या सुगंध आहा। संसारी लोगों को दुर्गंध आ सकता है, भगवान शिव तो आनंदित का अनुभव करेंगे भाई, आह क्या कहना। धूपो अगर उर बपुरिदम, इसलिए आप लोग शुक्ल यजुर्वेदी मानदंडिनी शाखा अंतर्गत रुद्री करते हो ना, रुद्री, उस रुद्री में 7वां अध्याय क्या सुंदर है। लोमभ्यस्वाहा लोमभ्यस्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मागुंसेभ्य स्वाहा मज्जभ्य स्वाहा अस्थिभ्य स्वाहा स्तभ्य स्वाहा रेतसे स्वाहा। देव जी, शरीर में जितने धातु हैं सबका नाम लेते हुए स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वैदिक सनातन धर्म में यही अंत्येष्टि कर्म है, इसलिए अंत्येष्टि कर्म जरूरी है। 16 संस्कार में अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि कर्म, इसको अश्वमेध यज्ञ कहा है, क्योंकि तुम और हम अश्वमेध यज्ञ का नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास वो साधन नहीं है, हमारे पास वो साधन नहीं है कि वो अश्वमेध यज्ञ करें। तो फिर हमें अश्वमेध यज्ञ करना हो तो क्या करें? बोले ये यही अश्वमेध यज्ञ, जीवन को इस भावना से तैयार करके रखो, उषावा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, वेद आरंभ यहां से होता है, ये अपने सिर को ही वो घोड़े का सिर के रूप में भावना करना है। वात प्राण चक्षुः आदि, तो वही लोमभ्यस्वहा लोमभ्यस्वहा, शरीर में जितने भी रोम हैं वो भी उसी यज्ञ में आहुति हो, ये मंत्र पढ़ा जाता है श्मशान में, श्मशान क्रिया में। तो हमसे पूछते महाराज, मरने के बाद देह दान कर देना चाहिए मेडिकल को? भाई देह दान तक करो, ये लोमभ्य स्वाहा लोमभ्य स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदभ्य स्वाहा, ये कैसे होगा फिर? ये अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा फिर बोलो? हाँ, तुम्हारा ये अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा? पुष्पाणि संतु तव देव ममेन्द्रियाणि धूपो गरुर बपुरिदम हृदयम प्रदीप। पंचोपाचार पूजा होती है ना, पंचोपचार, धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन, ये पंचोपचार है। इंद्रियां पुष्प हो गए, शरीर धूप हो गया और हृदय दीप हो गया। प्राणाहविंसि करवाणि तवाक्षताश्च, अंतःकरण जो चित्त बुद्धि और अहंकार है वही तवा अक्षता, आपके लिए अक्षता हो। या फिर पांच ज्ञान इंद्रियां पुष्प हो तो पांच कर्म इंद्रियां अक्षता हो। प्राणा हविष्य, ये जो प्राण है यही आपके लिए नैवेद्य हो। पूजा फलम व्रजतु साम्प्रतमेश जीवः। महाराज इस प्रकार से ये जीवात्मा आपकी पूजा करेगा तो उसको इस पूजा का फल तो मिलना ही चाहिए। तो यह भक्तों की अवस्था, और भक्तों की दूसरी अवस्था का यहां वर्णन करते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी। भगवान विष्णु ने जो भक्ति की है, विष्णु की हर क्रिया शिव भक्ति से भरा हुआ है, और शिव की आज्ञा से ही, शिव को प्रसन्न करने के लिए ही भगवान विष्णु का पूरा जीवन समर्पित है। इस 82वें श्लोक के द्वारा भगवान विष्णु की शिव भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। बाणत्वम वृषभत्वम अर्धपुषा भार्यात्वमार्यापते। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य लगेगा ये कथा, ये श्लोक का अर्थ आप सुनेंगे ना बड़ा आश्चर्य लगेगा, और बिल्कुल सत्य है ये कथा, बिल्कुल यथार्थ है वो। घोड़ित्वम सखिता मृदंग बहता चित्यादि रूपम ददौ त्वत्पादे नयनार्पणम च कृतवांस त्वद्देह भागो हरिः पूज्यात् पूज्यतर सये बहिनते ओ वा तदन्योधिक। हरि, भगवान विष्णु हरि, हरति पापानि इति हरि, हरति दुःखानि इति हरि, अज्ञानम तत्कार्यं च हरति इति हरि। हर हरि व्युत्पत्ति एक ही है, हरि ने, हरि ही, हरि ने, विष्णु ने आपके प्रसन्नता के लिए क्या नहीं किया। बाणत्व, आपने कहा कि तू बाण बन जा तो भगवान विष्णु बाण बन गए। कथा मालूम है कि नहीं, त्रिपुरासुर को मारना था तो शिवजी बायक और कोई मारने में समर्थ नहीं था, विष्णु खुद त्रिपुरासुर को मारने में असमर्थ हुए, ब्रह्मा खुद त्रिपुरासुर को मारने में असमर्थ हुए, इंद्र वरुण आदि सब त्रिपुरासुर को मारने में असमर्थ हुए, अब शिव बायक और कोई भी त्रिपुरासुर को मार नहीं सकता है, और शिव भी अपने पास जो प्रसिद्ध उनके हथियार हैं उस त्रिशूल से त्रिपुरासुर को नहीं मार सकते, क्योंकि उसने वरदान ही ऐसा मांगा था। किसी भी देवी देवताओं के हथियार जो प्रसिद्ध है उन हथियारों से मेरी मृत्यु न हो, ले जाओ। अब विष्णु कैसे मारेंगे उसको, क्योंकि उनका प्रसिद्ध हथियार सुदर्शन चक्र है। अब विष्णु मारेंगे तो सुदर्शन चक्र से, और उससे उसकी मृत्यु न हो तो विष्णु कैसे मारेंगे उसको। और शिवजी का हथियार है त्रिशूल, उससे वो मरना नहीं। देवी का हथियार है तलवार खड़का आदि, उससे मरना नहीं। ब्रह्मा जी का हथियार ब्रह्मास्त्र है, नहीं मरेगा उससे। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी से, तुमने क्या वरदान दी? बोले मैंने तथास्तु तो कह दिया। तथास्तु तो कह दिया मैंने, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा कि भाई प्रसिद्ध किसी भी देवी देवताओं के कोई भी हथियार से मेरी मृत्यु न हो, फिर उसको मारेंगे कैसे? पत्थर से वो न मरे, बोलो। भगवान ने शिव ने कहा कि ठीक है, उसने उसने क्या उसके बाप ने भी कभी नहीं सुना होगा ऐसा हथियार, हम तैयार करते हैं। महाराज कैसे? रथ च्यवणीयंता, मैंने स्तोत्र याद कर लो, पुष्पदंताचार्य जी ने उस चित्र को इस श्लोक में रख दिया है। रथ च्यवणीयंता सतधृति रगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रारकौ रथचरण पाणी सरयति दिदक्ष्योस्ति कोयम् त्रिपुरतृणमाडंबर विधिर् विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्र प्रबुधिया। रथ छोड़ी, पृथ्वी को रथ बना लिया। यंता सतधृति, ब्रह्मा जी को सारथी बना दिया। आज तक कहीं भी कहीं उल्लेख ही नहीं है ब्रह्मा जी सारथी बने, कृष्ण सारथी बने, ये तो समझ में आता है। ब्रह्मा सारथी बन गए, ये कहीं सुनने में आया? बना दिया। पृथ्वी रथ बनाया, ये कहीं सुनने में आया? नहीं, बना दिया। समझे रथ पाणी धनु, रथ पाणी रथ चक्र पाणी है ना, सुदर्शन चक्र जिसके हाथ में, उसको तो धनुष बना दिया, तीर बना दिया। भगवान विष्णु को कहा कि तुम तीर बनो। सुमेरु पर्वत को धनुष बनाया, ब्रह्मा जी को सारथी, पृथ्वी को रथ, सूर्य चंद्र को रथ के पहिए, लेव जी, और विष्णु को बनाया बाण। वो खुशी से बन गए विष्णु। किसके लिए बने? तो शिव की प्रसन्नता। उन्होंने कहा कि तुम्हें बाण बनना पड़ेगा, तब हम त्रिपुरासुर को मारेंगे। बोले हम बन जाएंगे महाराज। ब्रह्मा जी को कहा तुमको सारथी बनना पड़ेगा, तब हम मारेंगे। बोले बन जाएंगे महाराज। सुमेरु पर्वत को कहा तुझे धनुष्यमान बनना पड़ेगा, बन जाएंगे। तो भगवान विष्णु बाणत्वम, शिव की प्रसन्नता के लिए विष्णु बाण भी बन गए। दूसरा प्रसंग, शिव की ही प्रसन्नता के लिए, शिव के प्रसन्नता के लिए वृषभत्वम बैल भी बन गए हैं। भगवान विष्णु बैल बन गए वृषभत्वम। उसी प्रसंग में त्रिपुरासुर के मारने का प्रसंग था। ये पृथ्वी को रथ बनाया था, सूर्य और चंद्रमा को रथ के पहिए बनाए थे, ब्रह्मा को सारथी बनाया था, सुमेरु पर्वत को धनु बनाया था, और उस पृथ्वी रूपी रथ को तां खींचने वाले घोड़े क्या थे, उस श्लोक में इसका वर्णन नहीं किया पुष्पदंताचार्य जी। घोड़े क्या थे, सारे वेद के ऋचाओं को मंत्रों को घोड़ा बनाया था भगवान शिव ने। देख लो। और जब भगवान शिव ने वेद के मंत्रों को घोड़ा बनाया और युद्ध करने के लिए तत्पर होकर आगे बढ़े, तो वेद के ऋचाएं घोड़े बनकर खींचते खींचते घोड़े टिक गए, उसके घुटने टिक गए। वेद की ऋचाएं असफल हो गई, पृथ्वी रूपी रथ को तांने में, खींचने में कमजोर पड़ गए। हाँ, कितनी ऋचाएं हैं बोलो? 1,00,000 मंत्र हैं। तो 1,00,000 घोड़े इस रथ को खींचने में असमर्थ हो गए। तो भगवान शिव ने विष्णु की तरफ इशारा किया, ये वेद रूपी घोड़े तो इस रथ को नहीं खींच पा रहे भाई। तो भगवान विष्णु ने तुरंत ये घोड़ा बनो, क्या कहते हैं, बेसब बन गए। कहा कि इस रथ में नहीं तो चलो मेरे कंधे पर चढ़ो, मैं चलता हूं। तो वहीं उसी पुराण में इसका वर्णन है। तो भगवान शिव को पीठ में ढोकर भगवान विष्णु उस युद्ध में आगे बढ़े। ये भी पुराण का प्रसंग है। ये प्रसंग लिंग पुराण में आता है। तस्मिन् आरोहति रथम कल्पितम लोक संवृतम शिरोभि पतिता भूमौ तुरंगा वेदरूपिणी। वेदरूपी घोड़े गिर गए, खींच नहीं पाए। तब भगवान विष्णु ने कहा, वृषेन्द्र रूपी चौथाया, वृषभ का सर्वश्रेष्ठ वृषेन्द्र, थापया मास वैक्षण भगवान धरणी धरा। भगवान विष्णु तुरंत वृषभ का रूप धारण करके फिर उस रथ को तान खींचने लगे। तो वो हो गया वृषभत्व। शंकराचार्य जी को तो ये पता था, इसलिए उसका संकेत कर दिया। भगवान विष्णु शिव को प्रसन्न करने के लिए बाण भी बन गए और वृषभ भी बन गए, सांड भी बन गए। अर्ध बपुसः और भगवान शिव विष्णु, भगवान शिव का आधा शरीर भी बन गए। इसलिए हरिहर, हरिहर मूर्ति है, आधा शिव आधा विष्णु। यौ तौ संघ कपाल भूषित करौ मालास्थि माला धरौ। एक हाथ में शंख है, एक में कपाल है, एक गले में एक साइड में वैजयंती माला है, एक साइड में निरकर है अस्थि माला। ये भगवान शिव का हरिहर स्वरूप है, तो उसी को संकेत कर दिया। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए विष्णु ने आधा शरीर शिव को अर्पण कर दिया। उधर संकेत कर दिया कि अर्ध बभूषा। यहां तक कि भगवान शिव की पत्नी भी बन गए। कौन? देव जी भार्या तुम, ऐसे पुराण में इसका प्रसंग है। मोहिनी रूप धारण करके बच्चा पैदा किया, एक बेटा, कथा प्रसिद्ध है। जब देवासुर अमृत मंथन हुआ तब असुर लोग उस अमृत के लिए झगड़ा करने लगे, देवता झगड़ा करने लगे। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और जाकर असुरों को सम्मोहित किया। अरे झगड़ा नहीं करो, हम तुम्हें बराबर बांट के पिला देंगे, झगड़ा मत करो। तो असुर तो तुरंत मोहिनी पर मोहित हो गए और उसके बातों पर आ गए। तुम ईमानदारी से बांटना? हां, बोले हां हां हम ईमानदारी से बांटेंगे। आज तक दुनिया में माया ने ईमानदारी से काम किया है? माया का नाम ही ईमानदारी से काम करे तो उसका नाम माया हो सकता है? कह दिया हां। लेकिन ये तो अमृत है भाई, तुम लोग आज तक तो दारू पीते रहे, मदिरा पीते रहे। भगवान विष्णु ने कहा, मोहिनी ने कहा, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रहा है। दुर्गंध आ रहा है इसका लगता है कि तुम बहुत दिनों से नहाए नहीं हो, और दुर्गंध शरीर से आ रहा हो तो दुर्गंध युक्त मदिरा पान करने में कोई आपत्ति नहीं थी। मदिरा पान करने के लिए नहाने की जरूरत नहीं है, है? अभी तक तो चलता था, लेकिन आज अमृत पान करना है। इस हालत में अमृत पान नहीं किया जा सकता है, तो क्या करें? जाओ नहा के, और ख्याल ये रखना, रामदेव बाबा ने पंचगव्य साबुन बनाया वो लेके जाना। मोहनीश प्रसन्न हो गया, खूब नाना, दुर्गंध सब हटाना है। और साबुन कहता तो ये नाराज हो जाता फिर। पंचगव्य साबुन का नाम है वो, रामदेव बाबा का बनाया हुआ साबुन का नाम रखा पंचगव्य। वो लेके जाना, बढ़िया नहा के आओ, फिर उसके बाद तुम्हें अमृत पिलाएंगे। देवता लोग असुर लोग तो गए नहाने के लिए पंचगव्य साबुन लेकर। और इधर भगवान विष्णु ने विचार किया कि यही मौका है। देवताओं को कहा कि अब समय बर्बाद मत करो, बैठ जाओ लाइन में सब फटाफट। तो सब लाइन में बैठने लगे तो राहु जो था, हम गंगा नहाने जा रहे पंचगव्य साबुन लेकर, ये लोग पंक्ति लगाने लग गए। कहीं गड़बड़ है भाई, है? तो पता नहीं किस जन्म का संस्कार जग गया हो। ये औरतों पर ज्यादा भरोसा मत करो बेटा, अपने आप को समझाने लगा है, भरोसा मत करो ज्यादा। तो फाड़ से उसने असुर कपड़ा फेर फार के बढ़िया धोती लाके तिलक तुलक लगा के आत्मानंद की तरह बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के बीच में थाल लेकर भगवान विष्णु को ध्यान नहीं रहा, और को भी ध्यान नहीं रहा। जब भगवान विष्णु फटाफट बांटने लगे तो उसके थाली में जब अमृत पड़ा तो अमृत पड़ते ही वो तो पान करने लग ही गया, प्रतीक्षा ही नहीं किया कि नमः पार्वती पते बोलेंगे बोलेंगे, प्रतीक्षा ही नहीं किया, आए आते ही पीने लग गया। तो सूर्य ने देखा ये तो जल्दीबाजी करने वाला असुर होता है,